SBS Audio is supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका हाथवर्णे और आज हमारे साथ भारत के इलेक्शंस पर बातचीत करने के लिए जुड़ी हैं पुरस्कार प्राप्त पत्रकार स्मिता शर्मा। स्मिता, इस बार का जो भारत का चुनाव है काफी अलग है, क्रूशियल है, क्या सिचुएशन है फिलहाल वहाँ पर?
देखिए, अभी जब आपसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं दिल्ली में नहीं हूँ क्योंकि वहाँ तो आज चुनाव नहीं है, ये पहले चरण का चुनाव है। काफी लंबे चुनाव होंगे, 7 चरणों तक, 19 अप्रैल से शुरुआत हो रही है और 1 जून तक ये चुनाव होंगे, 4 जून को नतीजे आने हैं। तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूँ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये काफी क्रूशियल क्षेत्र है और यहाँ के मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर का नाम काफी बारी जब हेडलाइंस में आया है तो गलत वजह से आया है। 2013-12 में भी यहाँ पर काफी दंगे हुए थे। यहाँ पर आमतौर पर पोलराइजेशन देखने को मिलती है, कम्युनल जो है ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। तो मुजफ्फरनगर में एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प लड़ाई है, हरिंदर मलिक है समाजवादी पार्टी के, संजीव बालियान है बीजेपी के, और अभी उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ से 80 लोकसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं। जैसा आमतौर पर कहते हैं कि दिल्ली में कौन चुना जाता है उसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, और उत्तर प्रदेश में ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, ये गन्ना शुगर केन के लिए भी जाने जाते हैं। इन प्रांतों में जो सीटें हैं, आज यहाँ 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वो अहम हो जाते हैं। लेकिन काफी सालों से जो है इलेक्शंस कवर कर रही हूँ, इन इलेक्शंस में 2-3 चीजें जो खास नजर आती हैं, चुनावी कैंपेन को लेकर बेहद ज्यादा जो है कोई जोश खरोश तो नजर नहीं आया सड़कों पर। लास्ट 24-48 घंटे ही थे जब थोड़े से जो है ताकत फूकी गई, और काफी लैकलस्टर रहा कैंपेन। उसकी कई वजह भी हो सकती हैं, उनमें से एक वजह ये भी हो सकता है कि जो लगातार बीजेपी ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि इस बार उनको बिल्कुल 400 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी, तो हो सकता है उसको लेकर भी एक डैम्पनर का काम हो। और दूसरी बात है, ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेंट इलेक्शन है क्योंकि पिछले 10 साल में भारत की जो राजनीतिक दशा दिशा है वो काफी बदली है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के तहत, क्योंकि इंडिया एज अ हिंदुत्व मेजोरिटेरियन प्रोजेक्ट, एक आइडियोलॉजिकल वैचारिक रूप पर जिस प्रोजेक्ट को हम बनता हुआ देख रहे हैं, तो आज अंदर देश के अंदर आज काफी सारे जरूरी सवाल भी हैं जो उठने चाहिए, जो उठाए जा रहे हैं विपक्षियों की तरफ से। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी हो, मीडिया हो, ये कितने मजबूत हैं, इनकी मजबूती जरूरी होती है किसी भी लोकतांत्रिक मजबूती के लिए। तो ये निश्चित रूप से ये चुनाव एक रेफरेंडम है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर, उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल पर, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इज नरेंद्र मोदी, और वो आगे अगर उनकी वापसी होती है इन अ रेयर 3rd consecutive term, तो ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो आगे चलकर क्या होगा, व्हाट विल इंडिया लुक लाइक इन द फ्यूचर, वो डिफाइन किया जाएगा, वो परिभाषित किया जाएगा, जिसकी वजह से भी इन चुनावों को हम काफी जो है अहमियत दे रहे हैं।
पार्टीज की अगर बात करें तो बीजेपी द्वारा मंदिर बनाया गया, राम मंदिर बनाया गया, आपके प्रमुख अभी जेल में हैं और ऑपोजिशन का सबसे बड़ा इंडिया संगठन बना, तो कैंपेन्स फिलहाल किस तरीके से देश भर में चले आ रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की है?
इसके देखिए काफी लेयर्स हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जो इंडिया अलायंस गठबंधन बना था उसमें जिस तरह की ऊर्जा आनी चाहिए थी या कोहिजन नजर आना चाहिए था, वो एक लंबे वक्त तक नहीं नजर आया। इनफैक्ट इन एन आयरोनिकल वे, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई 21 मार्च को, आबकारी नीति के तहत एक एलिगेशन लगा उन पर कि लिकर स्कैम किया है उन्होंने, 100 करोड़ रुपए का किकबैक लिया है, 2021 में उन्होंने एक लिकर पॉलिसी में बदलाव किया था जिसे बाद में उनकी सरकार ने 2022 में बदल दिया था, और उन किकबैक्स में से कम 45 करोड़ का जो पैसा है वो गोवा के चुनावों में खर्च हुआ, हवाला का इस्तेमाल हुआ, मामला कोर्ट में है, उनके कई नेता हैं, उनके पूर्व उनके ही सहयोगी हैं जैसे मनीष सिसोदिया हो, सचिंदर जैन हो, जो लोग जेल में हैं। तो उसके बाद बल्कि एक बार फिर से एक शॉट इन दी आर्म की तरह देखने को मिला कि इंडिया अलायंस एक साथ आई, रामलीला मैदान में उन्होंने एक बड़ा हुजूम इकट्ठा किया, उसमें प्रोटेस्ट किए। लेकिन ये समझना होगा कि देखिए इस वक्त जहां तक भारत में विपक्ष का भी सवाल है, अगर वो साथ आ भी रहे हैं जमीन पर, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह नदारद हैं। जमीन पर अगर वो कुछ रैलियां कर भी रहे हैं, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी जो पश्चिम से पूर्व तक महाराष्ट्र वो पहले उत्तर से दक्षिण तक किया था कश्मीर से कन्याकुमारी तक और फिर उसका सीक्वेंस किया भारत न्याय यात्रा जो फुट प्रोसेशन कम व्हीकल प्रोसेशन था वो उन्होंने किया आपके मणिपुर से लेकर मुंबई तक का। लेकिन ये भी है कि मीडिया में ये खबरें आपको दिखेंगी नहीं, मुख्यधारा की मीडिया बहुत वन साइडेड है, अलाइंड है। जो आपको नॉइज दिख रहा है, शोर दिख रहा है, वो दरअसल सोशल मीडिया पर ही दिख रहा है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद बहुत सी आवाजें पूरी तरह से ही दब जाती। तो इंडिया अलायंस अपने आप में उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर बड़ा चेहरा कौन है जो एक लीड कर सके कोहिजिव यूनिट को लेकर, और जो दूसरे मुख्यमंत्री थे उनकी अलायंसेस काफी सारे स्टेट्स में बात नहीं बन पाई, वो भले ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हो उसको हमने देखा, बिहार में कुछ दिक्कतें आई थी, चुनौतियां आई थी, तो काफी जगह जो है अलायंस एक साथ नहीं रह सकी। लेकिन लड़ाई तो है, लेकिन इंडिया में आज की तारीख में कई सारे ऐसे क्षेत्रीय दल हैं, वो आपकी डीएमके हो तमिलनाडु में, तृणमूल कांग्रेस हो पश्चिम बंगाल में, ये सरी के जो पार्टियां हैं ये आज बीजेपी को चुनौती दे रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वन साइडेड है और विपक्ष मुक्त भारत तो हो चुका है, लेकिन एक जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए था, अगर आपने एक अलायंस बनाई है विपक्षी दलों की तो एक न्यूनतम जो है आप एक कार्यक्रम लेकर आते कि ये हमारे मिनिमम पॉइंट्स हैं जो पार्टियों की इंडिविजुअल घोषणा पत्र से अलग होते और एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करते, वो नहीं हो पाया। पार्टियों के पास भी पैसे नहीं है, देखिए अब कांग्रेस के फंड्स फ्रीज कर दिए गए चुनावों के ठीक पहले, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा मामला चला है, उसमें पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर बेहद गंभीर सवाल उठे हैं कि एक ही दल को सबसे ज्यादा क्या फायदे मिले हैं नहीं मिले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो है चुनावी चंदे को पूरे के मसले को ही गैर कानूनी करार देते हुए उसे खारिज कर दिया। तो एकजुट विपक्ष भले ही ना दिख रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष नदारद है या कोई ऑपोजिशन है नहीं। एट द एंड ऑफ द डे बीजेपी की वोट शेयर जो 31% थी 2014 में और आज की तारीख में शायद कुछ 37 या 38% होगी, तो एक लगभग आपका 50-60% का तबका है जो बीजेपी के साथ नहीं है। तो उसी तबके को अब जो ऑपोजिशन अपने लिए चैनलाइज कर पाती है या नहीं एज अ प्रो वोट, वो देखने वाली बात है।
इस इलेक्शंस में या कैंपेन्स में एनआरआईज की भूमिका कितनी क्रूशियल है?
देखिए एनआरआईज की भूमिका एज सच नहीं है इस वक्त, एनआरआईज की वोटिंग राइट्स जब तक नहीं होती हैं, तो एनआरआईज की भूमिका आज की तारीख में इंडिया के लिए जो इम्पोर्टेंट है, डायस्पोरा हैज बिकम अ वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर नरेंद्र मोदी की वो ग्लोबल स्टेज पर जो अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। आपने काफी बार ही सुना होगा डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री को कहते हुए कि पिछले 10 सालों में जो है पासपोर्ट का वजन वो ज्यादा भारी हो गया। हालांकि 10 साल के पहले खुद डॉक्टर जयशंकर भारत की फॉरेन पॉलिसी में इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे थे, वो विदेश सचिव रह चुके हैं, अमेरिका चीन में एम्बेसडर रह चुके हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि सारा काम 2014 के बाद ही हुआ है तो सवाल निश्चित रूप से मन में आते हैं कि भाई तो 2014 के पहले के वाले लोगों ने कुछ काम नहीं किया था क्या जिनमें वो भी शामिल थे। बहरहाल जो डायस्पोरा है, देखिए वो पॉलिटिकल टूल के तौर पर आज काफी इम्पोर्टेंट है फॉर दिस गवर्नमेंट, कि अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी वहां जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ रैली करते हैं, लोगों का पूरा हुजूम आता है, जमावड़ा आता है, और ये वो डायस्पोरा है जो स्किल्ड वर्कर्स स्किल्ड माइग्रेंट्स का डायस्पोरा है, जो फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन डायस्पोरा है। ऑस्ट्रेलिया में आज चीन से शायद ज्यादा हमारे डायस्पोरा की संख्या है, हमने ओवरटेक शायद कर लिया है उनको इन टर्म्स ऑफ द इमिग्रेंट पॉपुलेशन विद इन ऑस्ट्रेलिया जहां हम बात कर रहे हैं इस बार। तो ऐसे काफी सारे जो वेस्टर्न नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां पर डायस्पोरा की भूमिका है, डायस्पोरा की रेमिटेंसेस का इम्पोर्टेंस होता है, डायस्पोरा की अपनी लेवल पर उनके परिवार वालों के साथ दोस्तों के साथ में वो एक इंडिया की प्रोजेक्ट को, और इस सरकार को देखिए इन्होंने विदेश नीति को ना बड़ी इंट्रिकेटली जोड़ दिया है अपने घरेलू नीति के साथ है। पहले ये होता था लेकिन फॉरेन पॉलिसी हमेशा जो है डोमेस्टिक पॉलिसी का एक नैरेटिव नहीं बन पाती थी और फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर ज्यादा वोट नहीं आते थे। परमाणु डील जैसा एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट ये हर रोज किसी दो देशों के बीच में नहीं होता है, जो सिविल न्यूक्लियर डील भारत और अमेरिका के बीच में 2008 में वो एक लैंडमार्क मोमेंट था, लेकिन वो एक चुनावी मुद्दा नहीं था। इस सरकार के साथ ये है कि वो भले ही पाकिस्तान हो, चीन हो या कच्चीतिपुर जैसे आइलैंड के मुद्दे को भी इन्होंने उठा दिया, ताकि तमिलनाडु में इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां कुछ सीटें आ सके, जिससे श्रीलंका के लोग नाराज हुए। और उस मसले को उठाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो 50 साल बाद आप एक एग्रीमेंट को उठा रहे हो जो स्ट्रेटेजिकली भी उससे कोई गेन नहीं होना है, उस मसले को उठाकर हमें लॉसेज ही होंगे। तो जो आपने अगर विदेश नीति और घरेलू नीति को इतना जोड़ा है, तो उसमें भी जो है फिर वो डायस्पोरा की एक भूमिका हो जाती है उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में, कि देखो ये वो सरकार है जिसकी वजह से हर जगह जो है वर्ल्ड स्टेज पर हमें एक इम्पोर्टेंट लीडर या लीडरशिप के तौर पर देख रहा है।
इस बार युवा मतदाताओं को कितना महत्व दिया गया है, या फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए हम कह सकते हैं क्या अलग है इस बार, और सर्वसमावेशी वोटिंग के लिए उठाए गए कदम, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। कैसी प्रतिक्रिया भी मिल रही है लोगों की?
देखिए, भारत में इस बार लगभग 2 करोड़ ऐसे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भारत एक बहुत युवा देश है, हम सबसे ज्यादा सिर्फ घनी आबादी वाले देश ही नहीं है, 140 करोड़ की जो हमारी आबादी है 1.4 बिलियन की, अगर आप इंडियन आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के फिगर्स को देखें, इस देश का 66% वो वर्ग है जो युवा है, जो 35 साल से कम उम्र का है, 40% वो लोग हैं जो 13 से शायद 29 साल के बीच आते हैं। तो एक तो ये बड़ा सक्रिय जो है ये हमारा वर्कफोर्स है, जो हम उम्मीद कर रहे हैं हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड बने, लेकिन आज की तारीख में इसके साथ बड़ी चुनौतियां जुड़ी हुई हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं पैदा हो रही। हमारा ग्रोथ तो हो रहा है, ग्रोथ रेट हमारा 7% के ऊपर है, लेकिन जॉब्स नहीं हो पा रहे हैं। जॉब्स अगर लोगों को मिल भी रहे हैं तो वेल पेइंग जॉब्स नहीं है, वो उनकी स्किल सेट को मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए युवाओं की भूमिका तो निश्चित रूप से बहुत जरूरी हो जाती है। उनको आकर्षित करने के लिए चुनाव आयोग ने कई सारे अच्छे हथकंडे अपनाए हैं, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी देखी आपने? हाँ, तो उसमें जो सीन है ना, काजोल दौड़ रही होती है ट्रेन में, शाहरुख खान हाथ बाहर करके उनको ये देता है कि आप हाथ पकड़ लें, तो वो राज और सिमरन के सीन को उन्होंने एक मीम बनाकर डाला कि सिमरन और राज भी वोट करने जा रहे हैं, आप कहाँ हैं। आज ही सुबह मैं देख रही थी एक पोस्टर डाला है जिसमें गंगूबाई से उन्होंने आलिया भट्ट का फोटो उठाया है, और उसमें नीचे स्लोगन लिखा हुआ है कि गंगू चांद थी, चांद रहेगी क्योंकि गंगू वोट करती है। सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंडरी क्रिकेटर्स को रोप इन किया गया है ताकि वो आकर अपील कर सके वोटों के लिए। जेंजी और मिलेनियल के ये जो है ना, जो रील वाली पूरी की पूरी जनरेशन है, तो उनके लिए तो इंस्टा वगैरह को अप्रोच किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि ये युवा निकले, अपने मतदान का इस्तेमाल करें, लेकिन गर्मियां भी बढ़ रही हैं। वैसे बूथ्स में अभी जैसे हम एक दो जगह जहाँ पर गए, इस बार 30,000 करीब जो बूथ है उनमें से लगभग 22,000 या 23,000 बूथों में वेबकास्टिंग की अरेंजमेंट की है, ऐसा दावा किया चुनाव आयोग ने। अब इसमें से कितना काम करता है नहीं पता। लेकिन सुबह सुबह जैसे यहाँ स्थानीय समय 8 बजे से मतदान की शुरुआत हो गई थी। तो देखिए, इलेक्शन के प्रोसेस हमारा जो है ना वो स्मूथ है इंडिया में, उसकी तो हम एक मिसाल है। और हमारे यहाँ से इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जाते हैं दुनिया भर के तमाम इलेक्शंस में, बुलाए जाते हैं बतौर पर्यवेक्षक, वो सेंट्रल एशिया हो, वो बांग्लादेश हो, दक्षिण भारत के देश हो, दक्षिण एशिया के देश हो। लेकिन जो जरूरी सवाल है कि सिर्फ चुनाव ठीक से करवाना ही एक मजबूत लोकतंत्र का इंडेक्स नहीं है। जस्ट द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन स्मूथली डज नॉट इंडिकेट दैट द डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज हेल्दी। सो दैट आई थिंक इज अ क्वेश्चन जो इस पर गौर करने की जरूरत है इन चुनावों में।
आखिरी प्रश्न स्मिता जी, कि बीजेपी रूलिंग पार्टी थी तब इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस काफ़ी हद तक अच्छे हो गए या बदल गए, और भी नज़दीक आ गए दोनों देश, अगर ये रूलिंग पार्टी फिर से एक बार जीतती है तो किस प्रकार के रिलेशंस बदलने की या और अच्छे होने की संभावना है?
देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो द्विपक्षीय संबंध बदले हैं वो सिर्फ बीजेपी की वजह से नहीं बदले हैं, ये बदले हैं क्योंकि दोनों देशों की एक तो जो रणनीतिक समझ है, रणनीतिक जो प्राथमिकताएं हैं वो बदली हैं, सामरिक पोजीशंस बदले हैं, भारत की स्थिति मजबूत हुई है। ऑल्सो इंडो पैसिफिक में आप देखें, क्वाड को लेकर एक जो पूरा हेजिटेशन था वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से था, क्योंकि एक ऐसा वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में इतने ज्यादा गाढ़े संबंध थे कि उस चक्कर में ऑस्ट्रेलिया ने पुल आउट किया था क्वाड से, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को वापस लेने में हेजिटेशन थी दूसरे पार्टनर्स की. यूरेनियम के मसले पर ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में विवाद छिड़े थे. लेकिन जब 2017 में दोकलम का स्टैंड अप हुआ भारत और चीन के बीच में और वो मसला बाद में सुलझा, लेकिन भारत को रियलाइज हुआ कि इसके लिए आगे चलते हुए आपको ग्लोबल कोअलिशन ऑफ द विलिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, जिसे कहते हैं हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा. और इंडो पैसिफिक में उसका 2017 के बाद आपने देखा, 2017 में सितंबर अक्टूबर तक जो है वो डोकलम का मसला सॉल्व हुआ. नरेंद्र मोदी चीन जाते हैं, वहां एक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं और बाय नवंबर क्वाड सम्मेलन की जो है रिवाइवल की प्रोसेस शुरू हो गई ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल्स पर. और उसके बाद इतनी तेजी आती है कि उसके बाद आप देख रहे हैं कि अब शिखर सम्मेलन हो रहे हैं क्वाड में टॉप लीडर्स के अंदर. इंडिया की मार्केट आज की तारीख में इतनी बड़ी मार्केट है, आप दुनिया के पांचवे लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. हमारी इस वक्त की जो जीडीपी है वो 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स है. अगले तीन सालों में हमारी 5 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है. इस मार्केट को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं. और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो व्हाइट पेपर बना था ऑन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, जिसे बनाया था अनिल वाधवा ने भारत की तरफ से जो विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी थे, और पीटर वर्गीज जो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर रहे थे भारत में एक बहुत मुश्किल दौर में और बाद में चलकर वहां ऑस्ट्रेलियन फॉरेन सेक्रेटरी बने, उन्होंने उसको को ऑथर किया और उसमें तमाम फायदे आए, जिसके बाद एक इंटरिम ट्रेड डील हुआ, निगोशिएट हुआ, उसको हमने बनता हुआ देखा. तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका इनका जब नजरिया चीन को लेकर बदला है तो एज अ काउंटर बैलेंस ऑब्वियसली भारत की इम्पोर्टेंस इंडो पैसिफिक में बदली है. भारत की इम्पोर्टेंस उसके डेमोग्राफिक डिविडेंड को देखते हुए एज अ सप्लायर ऑफ स्किल्ड माइग्रेंट वो बदला है एंड भारत की अपनी मार्केट बदली है. तो इसीलिए ये रिश्ता जो है किसी एक शख्सियत या एक पार्टी पर निर्भर नहीं है. उम्मीद यही रहेगी कि आगे चलकर ये भारत अमेरिका जैसा संबंध बने जो द्विपक्षीय संबंध दरअसल बाईपार्टिजन संबंध है. जहां तक यूएस कांग्रेस का सवाल है कि वो डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन आए, उसमें एक स्थायित्व देखने को मिलती है.
स्मिता जी, आज आपने ये समय हमारे लिए निकाला, इतनी अच्छी जानकारी हमें प्रदान की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
जी बहुत शुक्रिया, और SBS हिंदी के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार. थैंक यू.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.